जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो हम हमारे ब्रह्मचारी क्लास की विषय पे चर्चा कर रहे थे, कैसे शारीरिक स्तर पर हमें ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करना है, और शारीरिक स्तर पर हम व्रतों का पालन कर पाएंगे जब हम मानसिक स्तर पर उन व्रतों का पालन कर सकेंगे। मन को यदि हमें सही दिशा में ले जाना है तो बुद्धि, हमने बुद्धि की चर्चा की पिछली बार, और बुद्धि के संपर्क बुद्धि को यदि हमें सही दिशा में ले जाना है तो श्रद्धा, अच्छा बुद्धि के संदर्भ में ये उदाहरण है रथ का, जो हम अक्सर सुने हैं। केवल बुद्धि के संदर्भ में नहीं, मन के भी और हमारे शरीर के भी संदर्भ, यशवंत प्रभु क्या उदाहरण है रथ का? रथ का उदाहरण
सारथी है, वो बुद्धि है और मन है वो लगन है, और जो अंदर बैठा है वो आत्मा।
तो इसकी तुलना यदि हम अर्जुन के रथ से करें कुरुक्षेत्र में, सारथी कौन थे? परमात्मा। श्री कृष्ण। तो हम जो आत्मा हमारे इस शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ हैं, तो हमें हमारे शरीर रूपी रथ के सारथी या लगाम किसके हाथ में लेनी है? भगवान श्री कृष्ण। क्या उतना ही काफी है? भगवान श्री कृष्ण लगाम ले लेंगे? अर्जुन के सारथी भगवान क्यों बने? ना? भक्त होने के वजह से। तो भगवान बुद्धि का रोल ले रहे हैं, अर्थात यदि हम ये तुलना किए हैं हमारे रथ की अर्जुन के रथ से, तो बुद्धि की जगह स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की जगह लेते हैं कब? जब आत्मा अर्जुन की तरह हो। अर्थात भगवान ने अर्जुन के संदर्भ में गीता में क्या क्या बोला है? डायरेक्टली अर्जुन को भगवान ने गीता में क्या क्या बोला है? सखा अनुसूयवे,
कौन थे?
नहीं नहीं वो सब तो फिर नाम हो गए। भक्तों सिमे सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस है ना। ये सब सखा अनुसूय सब बोलने से पहले भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बोला? कौन सा श्लोक? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च कथासूं च कथासूं च नानुशोचन्ति पंडित। पंडित की तरह तुम्हारे वाक्य हैं अर्जुन, जो तुम धर्मशास्त्र बोल रहे हो एकदम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो, लेकिन मेरे मतानुसार अर्जुन तुम मूर्ख हो, अव्वल नंबर के मूर्ख। तो भगवान देखो यहां पर अर्जुन को मूर्ख भी बोल रहे हैं और अनुसूयवे भी बोल रहे हैं, और फिर भक्त भी सखा भी आगे चल के सब बोले। तो इसमें यह समझ में आना चाहिए कि भक्ति में मूर्खता ये सब टॉलरेट की जा सकती है, परंतु अर्जुन को यहां पे भगवान कहीं पर भी ये नहीं बोले हैं कि अर्जुन तुम अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और, कपट कहीं पर भी उल्टा बोले नॉन एनवियस, अर्थात भगवान जो अर्जुन को ये सब से उल्लेख किए हैं तो भगवान हमारे भी सारथी बन सकते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि की जगह ले सकते हैं भगवान, यदि हम भी भगवान के सामने, गुरु के सामने मूर्ख, भौतिक दृष्टिकोण से मूर्ख के समान प्रस्तुत हों, और अनुसूयवे नॉन एनवियस। इसलिए जब हमारे मन में थोड़ा भी कपट आ जाता है, अर्थात हिपोक्रेसी, तो उस कापट्य के वजह से भगवान लगाम ढीला छोड़ देता है, अर्थात बुद्धि बुद्धि मन के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो ढीला छोड़ती है, और मन के ऊपर बुद्धि की पकड़ ढीली हुई तो फिर घोड़े दिशाहीन हो जाते हैं, दे बिकम डायरेक्शनलेस। तो यदि हमारे घोड़े दिशाहीन हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि लगाम ढीली है, और लगाम ढीली क्यों है, क्योंकि बुद्धि ने अपनी पकड़ उसके ऊपर से ढीली कर दी। बुद्धि अपनी पकड़ ढीली क्यों करेगी, जब अंदर कपट है। इफ वी आर सिंसियर देन कृष्णा इज रेडी टू होल्ड दी रीन्स, भगवान तैयार हैं लगाम पकड़ने के लिए। तो उसमें यह समझ में आता है कि हम अपनी शक्ति से या अपनी बुद्धि से हम लगाम को कष्टा नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए अच्छा, इनमें से जो अर्जुन के ये गुण बताए भगवान ने, इनमें से हमारे लिए कितने संभव हैं ताकि भगवान लगाम पकड़े? व्हाट इज पॉसिबल इन दिस स्टेज स्ट्रगलिंग साधकास वी आर ऑल। खैर ये सब तो बहुत ऊंची बातें हैं सखा। कोई है धन सखा? वी कैन ट्राई टू बिकम नॉन एनवियस एंड दिस ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। तो नॉन एनवियस बनने के लिए सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो, ये जो निमित्त मात्र हम ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि
कंट्रोलिंग मेंटालिटी हो
हाँ, या हम वो जो वर्णाश्रम की तुलना जब शरीर से की जाती है तो हम क्या है, पैर, अर्थात हम जो सबसे निचला दर्जा दिया गया वो हमें दिया गया। निमित्त मात्र से एक और बात समझ में आती है, वी आर फॉलोअर्स, जैसे गोपाल ध्रुव बोले, नॉट कंट्रोलर्स। फॉलोअर्स का अर्थ है हम अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए उस श्लोक में बोल दिया, दास अनुदास, दास 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 अनुदास, अर्थात अनुयायी, हम अनुसरण कर रहे हैं। तो निमित्त मात्र बनने के लिए हमें अनुसूयवे होना है। बिना अनुसूयवे के निमित्त मात्र नहीं बन सकते। निमित्त मात्र बनने की यदि चेष्टा नहीं कर रहे तो अनुसूयवे नहीं बन सकते। कैसे? ये दोनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको? कोई समझाएगा मुझे? नॉन एनवियस एंड बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट। शिवकुमार को और कोई किसी का मत है? एनवी अर्थात ईर्ष्या इज बिकॉज ऑफ ईगो। फॉल्स हो गया, फॉल्स ईगो। इसके बिना द्वेष नहीं हो सकता। जब कोई नम्र है उसके अंदर द्वेष कैसे आ सकता है? तो एनवी इज बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो मीन्स अहम ममेति, आई एम द डूअर। ठीक है, ego means I am the doer. So if I am the doer, then how can I be instrument? जैसे कि एक सर्जन है, सर्जन को जब किसी का ऑपरेशन करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है ना, स्केलपेल, सीजर्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। तो यदि वो सीजर अपने आप और कहीं काटना शुरू कर दे कि बाईपास सर्जरी है और सीजर ने हार्ट को ही बाईपास कर दिया और अपने से और कहीं जाके काटना शरीर को शुरू कर दिया, तो वो सर्जन कैसे उस यंत्र को, वो जो निमित्त मात्र कैंची है, उसको कैसे यूज कर सकते? आप कल्पना की कि आप कुछ करना चाह, मान लो आपका भक्ति शास्त्री एग्जाम, कैसे लिखेंगे? पेन से। ये पेन क्या है? इंस्ट्रूमेंट। तो आपको सब उत्तर पता है, तो आप लिख रहे हैं कि भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में बता रहे हैं, कर्म योग के विषय में बता रहे हैं इस प्रकार से, और आप लिखना, आप सब जानते हो उत्तर, परंतु ये पेन और ही कुछ लिख रहा है। आप कर्म योग के बारे में लिखना चाहते हैं, पेन कर्म कांड लिख रहा है। तो कैसा लगेगा आपको? और एक बात देखो, यहां पे कभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ हासिल करता है तो वो अपने उपकरण को कभी धन्यवाद नहीं देता। जैसे कि जब आप भक्ति शास्त्री बन गए या जो भी भक्ति शास्त्री बन गया, तो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? पेन को। यदि कोई आपको तो आप प्रभु जी भक्ति शास्त्र, नहीं खाली इसके वजह से हुआ, मैं कुछ नहीं, सारा श्रेय पेन को जाता। मारुति बोलो, अभी से मना कर, भक्ति शास्त्री बने नहीं, इसके पहले से मना कर। बट जस्ट सी, कृष्णा इज द ओनली पर्सन हु इज गिविंग क्रेडिट टू द इंस्ट्रूमेंट अर्जुन. कैन इमेजिन, पूरे युद्ध को जीतने का श्रेय भगवान ने अर्जुन को दिया. दिस इज लाइक गिविंग सब कुछ, आपका जनेऊ, ब्राह्मण थ्रेड, भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट टू द टेन. व्हाई? बिकॉज अर्जुन वॉज अनुसूयवे. तो अहम ममेति के कारण व्यक्ति निमित्त मात्र नहीं बन सकता. अभी समझ में आया? कनेक्शन समझ में आ रहा है मनमोहन जी? समझ में आया? अच्छा, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? माधव शरण को कनेक्शन क्या है इसका? ये सब का कनेक्शन क्या है? निमित्त मात्र, अचानक भक्ति शास्त्री पेन, ये सब क्या हो रहा
है?
हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यदि हमें हमारी बुद्धि, हमारे मन के लगाम को यदि भगवान के हाथों में देनी है तो हमें निमित्त मात्र बनना होगा. ये सब में से हमारे लिए पॉसिबल है निमित्त मात्र, उसके लिए अनुसूयवे ये तो खैर है ही. मतलब इसमें इसका पूरा जिस्ट ये है, आप कंफ्यूज मत होना. इसका पूरा मर्म मर्म ये ही है कि हमें पारदर्शी क्या बनना है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम. निमित्त मात्र का अर्थ है ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम. एंड दिस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट क्वालिटी which we have to inculcate in the brahmacharya, being transparent. Hamara life open book, open book jaise koi bhi aake usko padh le, us prakar ka life hona chahiye. Usme se agar thoda bhi ek page ek chapter band karke rakha humne, arthat wo jo instrument hai wo theek se kaam nahi kar raha, arthat pen mein ink kuch gadbad hai या फिर निब बराबर नहीं है या ज्यादा इंक आ गया. ज्यादा इंक आने से भी लिख नहीं सकते, कम इंक आने से भी लिख नहीं सकते. जितना इंक जरूरी है उतना होना चाहिए. तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका कनेक्शन हमें अभी पता लग रहा है कि अगर हमें हमारे इंद्रियों पे संयम लाना है तो उसका कनेक्शन ट्रांसपेरेंसी से कैसे, पारदर्शी होना और हमारे इंद्रियों पे संयम लाना. कनेक्शन समझ में आया? नहीं? हाँ, कंफ्यूजिंग हो रहा है? नहीं? हाँ. मैं जैसे, मैं फिर से एक थोड़ा रिकैप कर रहा हूं. ये घोड़े, घोड़े घोड़े समझ में आया ना? वो समझ में आया. घोड़े लगाम, घोड़े लगाम और सारथी. तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बनेंगे, लगाम को संभालेंगे, घोड़ों को अपनी दिशा में ले जाएंगे. कब? जब हम अर्जुन जैसे गुण हासिल करेंगे, जैसे निमित्त मात्र
अनुसूयवे अर्थात पारदर्शी ब्रह्मचर्य आश्रम में। वी शुड हैव ट्रांसपेरेंट लाइफ। जब वो ट्रांसपेरेंट लाइफ होगा तब जाके हमारी इंद्रिय, तो हमारे इंद्रिय संयम में आने का कनेक्शन पारदर्शी होने से। अब समझ में आया? कोई प्रश्न? आप समझ में नहीं आया था? द्वेष रहित। असूया, असूया कहते हैं ईर्ष्या को, अनुसूय अर्थात उल्टा, नॉन एनवियसनेस। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अभी इस पे ध्यान दीजिए आप। अनुसूय वे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वालिटीज। हाँ राधानाथ महाराज का एक कोट है, वो जो है ना उनके व्यास पूजा के जो कोट्स हैं उसमें है। एक जो अपने फ्लैग पे भी है, मटीरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर द लिविंग एंटिटी हैज मेड द रॉन्ग चॉइस ऑफ नॉट लविंग कृष्णा बट वांटिंग टू बी लव्ड लाइक कृष्णा। Not wanting to love Krishna, but wanting to be loved like Krishna. Not wanting to understand, but wanting to be understood. Saint Francis said, don't try to be loved, but love others. Don't try to be understood, but understand others. So, Maharaj bol rahe the, ki भगवान श्री कृष्ण के प्रति एनवी का अर्थ ये नहीं कि हम शिशुपाल जैसे गाली देना शुरू करें। हमको लगता है शिशुपाल तो बहुत एनवी था। राधानाथ महाराज सेड, वन सिंगल एक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वी आर शोइंग टू कृष्णा आई एम एनवियस ऑफ यू। That is like Shishupal's blasphemy. एक इंद्रिय भोग की क्रिया, हम भगवान को सूचित कर रहे हैं कि भगवान मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं। How do you understand that? जैसे कि महाराज बोले that we want to enjoy like Krishna, not enjoyed by Krishna, but we want to enjoy like Krishna. So on this point of envy, again, there is a non-devotee devotee. So non-devotee is envious of Krishna when he enjoys sense gratification using the material energy. And a devotee uses Krishna specifically. It's like we are all in the Brahmacharya ashram. Is this our place? Ye kiska jagah hai? This is Krishna's abode. Just like government office, गवर्नमेंट ऑफिस किसका है? गवर्नमेंट का है, और उसमें जो काम करने वाले कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट। वो ऑफिस में, वो बिल्डिंग में जो फर्नीचर है वो किसका है? इंडियन गवर्नमेंट, सब लिखा रहता है फर्नीचर पे। फर्नीचर इंडियन गवर्नमेंट का है, जो सर्वेंट्स इंडियन गवर्नमेंट के हैं, उसका जो भी खर्चा, पैसा, पंखा, लाइट, सब कुछ किसका है? गवर्नमेंट का। सिमिलरली ब्रह्मचर्य आश्रम में एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू कृष्ण। तो यदि ब्रह्मचारी आश्रम में कोई डिवोटी यदि कृष्णा के गवर्नमेंट का माल अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, सो ही इज मोर सीवियरली चार्ज्ड देन अ नॉन डिवोटी हु इज यूजिंग द एक्सटर्नल एनर्जी। A non-devotee is trying to become like Krishna by using Krishna's external energy, Bahiranga Shakti. And sometimes, you know, a devotee uses Krishna's internal energy and Krishna to become Krishna. जैसे कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का उदाहरण महाभारत में। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के पास एक दिन जाते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान आपका सुदर्शन चक्र मिलेगा? ठीक है, लिया, वो संभाल ही नहीं पाए, गिर गया। तो भगवान ने उठाया और भगवान पूछे, क्यों चाहते थे, क्यों सुदर्शन चक्र मांगे? तो क्या बोला अश्वत्थामा? आप ही को मारने के लिए। तो कई बार हमारी मेंटेलिटी अश्वत्थामा की जैसे हो जाती है, यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज गिवन बाय कृष्णा, यूजिंग इट अगेंस्ट कृष्णा, वॉन्टिंग टू किल अवर ओन कृष्ण कॉन्शियसनेस बाई कृष्णा सुदर्शन। गेटिंग द पॉइंट? अश्वत्थामा मेंटेलिटी। किसको समझ में आया? वो स्टोरी समझ में आया? अश्वत्थामा ने भगवान का सुदर्शन मांगा भगवान को ही मारने के लिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में जो कुछ हमें हमारे रहने के लिए सांस ले जो ले रहे हैं, जो हमारा जीवन जीवन यापन हो रहा है, वो किसके बलबूते पे हो रहा है? डायरेक्टली भगवान के निर्देशन में ना। यहां पर हम डायरेक्टली भगवान के निर्देशन में है, भगवान के पार्षदों के निर्देशन में, नॉट लाइक द मटीरियल। तो यदि मंदिर में रहते हुए हम भगवान के दिए गए रिसोर्सेस को हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो अश्वत्थामा मेंटेलिटी, मतलब थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन वी आर किलिंग अवर कृष्ण कॉन्शियस। सो इट इज द सेम। क्या उसमें मुश्किल क्या समझ नहीं समझ में? अभी समझाओ आप, कोई उदाहरण दो। आपको 100 रुपया दिया है फ्लावर सेवा के, किसके किसके लिए फ्लावर लाना? भगवान के। उसमें से 5 रुपए का आप थोड़ा एक खुद के लिए माला बनाए। अरे 95 रुपीज का भगवान के लिए ना, 5 रुपए में कमीशन ब्रोकरेज। एक उदाहरण, ऐसे बहुत से उदाहरण कि भगवान का पैसा, किसका पैसा किसका है? भगवान का। भगवान के लिए दी हुई जगह,
पैसे का मिसयूज, जगह का मिसयूज,
फैसिलिटीज जो
मिलता है
वो सब का मिसयूज, दिस ऑल अशोकधामा मेंटालिटी, इट्स वेरी सीरियस, बी केयरफुल. This is called envy, which is more serious than a non-devotee. थोड़ा हम निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे. क्या फीचर्स होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट के, निमित्त मात्र होने के? फिर no addition, no subtraction.
Transparent.
सिंप्लिसिटी का अर्थ है कि जो मालिक चाहे वैसा करना. अगर सर्जन चाहता है कि वो सीजर अभी काटे चमड़ी को, लेकिन अगर सीजर बोलता है नहीं, ये वायलेंस, मैं तो योग्य ही नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं ईगो. फिर से ईगो. सिंप्लिसिटी मीन्स करिष्ये वचनम तव, कि मारने को बोला मारो, रुकने को बोला रुको. हमारे मिलिट्री में ऐसे बोला जाता था, हमारे ट्रेनिंग में पूछते थे, सो द परेड, सॉरी, द हेल्थ रन विल बिगिन मॉर्निंग 5 o'clock, फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट 6 o'clock, परेड एट 7 o'clock, थियोरी क्लासेस एट 10 o'clock, लंच एट 12:30, पीटी एट 4:30, रोल कॉल इन द इवनिंग एट 9:30, एवरीवन टू बेड बाय 10. एनी क्वेश्चंस? एक नहीं आता है. कीप रनिंग. Five rounds with the backpack on of the parade ground. Why? How can there be questions? Do as you have been told to do. No questions asked. तो ऐसा अनाउंस करें नेक्स्ट टाइम से नेचुरल में 5 o'clock मंगल आरती 5:30 नर्सिंग आरती लाइक दैट एंड 10 o'clock ऑल टू बेड एनी क्वेश्चन तो उसका अर्थ क्या है कि जो बोला गया है वो एज इट इज उसको पालन कर, उसको बोलते हैं निमित्त मात्र। तो ये सब एक दूसरे के सहायक है, they all support each other, being as it is, being simple, being transparent, ये सब। अच्छा, now there is an interesting term which Prabhupada used in the Bhagavad Gita, if in case you have started. अच्छा, भक्ति शास्त्री is compulsory. No questions asked. They will ask questions. Have to answer. Prabhupada used this term independently thoughtful. So how do you understand? I am confused. You have to be as it is, no addition, subtraction. You have to be simple, and Prabhupada is independently thoughtful. Samajh mein hai, independently thoughtful? So, can anyone explain to me how to resolve? कैसे सुलझाएं इस पहेली को आशीष प्रभु? इंडिपेंडेंटली थॉटफुल समझ में आया? प्रभुपद बोले ऑल ऑफ माय फॉलोअर्स शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, अर्थात आपको प्रभुपद ने पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से मुनि बनो। कौन से मुनि? सबरी मुनि
नारद मुनि।
तो प्रभुपाद एक जगह पे बोल रहे हैं यू हैव टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, और अभी हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया निमित्त मात्र भव सब ले साक्षी। तो हाउ, कैसे
इंप्रूवमेंट बोल सकते?
आशीष प्रभु बोल रहे हैं कुछ तो बोल रहे
हैं। एक बार सब उनके साथ विषय पर जा रहे थे तो बताया कि अपने लिए ऐसा एक लेना चाहिए, तो प्रॉपर ने जय प्रॉपर करके बाद में ऐसा डॉग भी हमें
प्रॉपर ने जय प्रॉपर
बोल प्रॉपर से डिसिपल्स ने तो जय तो बाद में एक कुत्ता आया तो उनको भी प्रॉपर ने ऐसा हमें चाहिए तो उन्होंने भी जय प्रॉपर कर दिया, तो प्रॉपर ने उनको यही ये किया
कुत्ते को इस्तेमाल नहीं करना बाकी कर। बिल्ली को ना बीइंग इंडिपेंडेंटली थॉट नहीं तो फिर निमित्त मात्र कैसे बनेंगे? अर्जुन का उदाहरण तो समझ में आता है इसके संदर्भ में। अर्जुन को भगवान ने बोला है कि कि तुम निमित्त मात्र बनो और तुम हो निमित्त मात्र. सो वॉज अर्जुन निमित्त मात्र और वॉज अर्जुन इंडिपेंडेंटली थॉटफुल? बोथ. विच मीन्स बोथ डू नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट ईच अदर. कैसे रोहित प्रभु? We followed as it is. But क्या क्या क्या? Very thoughtfully he followed. Which means Arjuna was thinking. After the entire Gita. Let me think. Now, 4th chapter, verse 32nd. Okay. Kaun sa? Enemy ka hai? Like that? When Karna came in front, Arjuna thought, wait a minute, let me think. Which verse from which Gita? I should apply one. We can understand in this way. Very simple. Krishna gave the instruction to Arjun, fight. He didn't tell Arjun how to fight. His independently thoughtful nature of how to fight. ऐसा नहीं था कृष्णा अभी सब जगह बता रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन अभी वो वाला तीर निकालना. कौन सा वाला? वो जो लेफ्ट से पांचवा तुनीड़ से वोला निकालती और थोड़ा लेफ्ट में रख के मारना उसको तभी मरेगा. और उसको जो खींचना है उसका वेलोसिटी इतना होना चाहिए, उसका तीर का स्पीड होना चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड होना चाहिए. उस स्पीड से जब जाएगा तब जाके उसके हृदय में लगेगा, मरेगा. तो कई बार हमको लगता है निमित्त मात्र मतलब सब ऐसा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है गुरु भैया तारो ही देश. बस how do we understand Prabhupada followed this instruction while being independently thoughtful? This is a standard instruction. Bharat bhumi to hoi janma manushya janma jaa sabko humko diya. How did Prabhupada take that instruction and acted independently? How do you understand? Kaise samajh mein aaya? Now, there is a literal way also. Yare dekhe, jisko bhi dekh liya, hey, Krishna, Krishna. Bolo, dehinos bin yata de, kisko bhi raaste mein pakda. Chaitanya Mahaprabhu ne, jisko bhi dekha, utte hi, kisko bhi dekha, usko, sabse pehle Krishna upadesh shuru kar raha. This is like, you know, being
overall instruction.
Very foolishly being an instrument. So now when Bhaktisiddhanta Thakur told Prabhupada, you go to the Western world and you preach in the English language and you print books. Ab how to print books, which printing company, which printing press, what paper to use, what should be the font, all that Prabhupada independently took decision. Kaun se jagah par, kaise, Western world bola, aisa nahi, Western world to bahut kuch ho sakta hai. So there is one extreme that you interpret the instructions that some of the god brothers of Prabhupada interpreted that this Prithviti Ache Nagaradi Gram means Prithvi means India. India ke Nagaradi Gram mein. Bahar kahan gram hai? City over. So this is called going one extreme, interpreting the instruction. And the other is that without using one's own intelligence, खुद की बुद्धि नहीं लगाते हुए उसको अंधाधुन follow करना, rather than doing some service, doing disservice. So Prabhupada started ISKCON. Nobody told. Bhakti Siddhanta Thakur didn't tell. You start one organization named ISKCON. In fact, many people question, still question, why did Prabhupada name the society ISKCON when his Guru Maharaj's society was named Gaudiya Mission? So was Prabhupada deviant? Or was he independently thoughtful? How do you understand? Because in the West, who would understand Gaudiya Mission? Yeah, Gaudiya Mission. So, उनको ये गौड़िया समझाने के लिए प्रभुपाद की आदिशक्ति जाती थी. So प्रभुपाद understood that the principle is what? I have to make them Krishna conscious. So then somebody suggested, Prabhupada name it God Consciousness. International Society for God Consciousness. Prabhupada said no. It should be Krishna Consciousness. So herein you can understand a balance between not being too loose that okay, anything in the name of God. He didn't compromise. It should be Krishna conscious, not simply just God conscious. Aur kaun kaun se udharan aapko samajh mein aate hain? In regards to instructions given and being independently thoughtful whilst following those instructions. One is Srila Prabhupada, and so many things in Srila Prabhupada's life you can see how he was independently thoughtful. और एक नमूना भी दिखा के आ गए. अ सैंपल ऑफ हु इज लॉर्ड राम. ही इज कमिंग कमिंग सून. आता ना ट्रेलर कमिंग सून. हनुमान जी एक ट्रेलर देखा के आ गए रावण. तो हनुमान जी को पूछा गया, रावण ने जब पूछा क्या है तुम्हारा परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने अपना परिचय क्या दिया, पवन पुत्र हनुमान. कौशलेंद्र दासोस्मि, कि जो कौशल के इंद्र है, कौशल देश के जो इंद्र है उनका मैं दास हूं. तो दिस इज कॉल्ड निमित्त मात्र. दैट इज हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. But he independently took decisions of what to do with his burning tail. Then he didn't let me SMS Ram, find out. He, मेरे पूछ को आग लगा, क्या करने का. तो अब हनुमान जी का एक उदाहरण. Should write down good examples here.
हनुमान जी
माधवेंद्रपुरी
क्या
गोपाल जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे लिए चंदन ले चंदन लेने के लिए नीलाचल पर्वत पे बीच में इस तरह से रावण जी
हाँ भगवान ने उनको आदेश दिया कि मेरे लिए चंदन लेके आओ ऐसा नहीं फिर भगवान से पूरा लिस्ट ली कौन सा क्वालिटी होना चाहिए फिर कितना किलो चाहिए और किसी को भेज दिया तो चलेगा क्या महाराज बोल रहे थे प्रवचन में इट वॉज नॉट दैट माधवेंद्र पुरी वेंट टू द इंटरनेट एंड वेंट टू क्या ईबे ईबे साइट होता ना परचेजिंग जिसमें करते हैं एंड he ordered from Malaya Parvat, from Malaya Desh, no? that 50 kilos of chandan to be shipped to Vrindavan. तो माधवेंद्रपुरी का उदाहरण कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर वो भगवान की सेवा की और सनातन गोस्वामी क्या है उदाहरण टोटल सिक्स गोस्वामी केवल वही नहीं और उनको ग्रंथ लिखने के लिए हमारे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को पुनः स्थापित करने के लिए छह गोस्वामी और
आप स्वयं
महाराज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं केशव नारायण ग्रुप के एक भक्ति विरांत ये देखिए हॉस्पिटल जो प्रभुपाद ने कभी उसको लिस्ट नहीं किया था उनके प्रोजेक्ट्स में
श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स केवल महाराज नहीं और भी बहुत जैसे कि इंद्रदुम्न महाराज वो वुडस्टॉक फेस्टिवल करते ट्रैवलिंग प्रीचर और जैसे हमारे और भी इस्कॉन के जो इंटेलिजेंसिया हैं जिन्होंने सब डिग्री लिया अभी ऑक्सफोर्ड से फिर कैम्ब्रिज से तमाम दर्शन महाराज ये सब अलग अलग तरीके से वही प्रभुपाद की वाणी को प्रचार करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाकर जैसे बुक्स लिख रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स जो बुक्स लिखते हैं वो बुक्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं प्रभुपाद ने बोला दैट यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी एंड यू डिलीवर द फिलॉसफी इन योर वर्ड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द तो इन सब उदाहरण से हमें हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में क्या सीखना चाहिए कि कोई भी छोटी सी भी सेवा हो उसमें हमें ये बैलेंस मेंटेन करना है एक तरफ है इंडिपेंडेंस और एक तरफ है हमारे प्रिंसिपल्स सिद्धांत और जो हमें इंडिपेंडेंस दिया है उसको फॉलो करना है तो अभी उदाहरण के तौर पर प्रेरणा फेस्टिवल, प्रेरणा फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो प्रेरणा फेस्टिवल के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, किचन, साउंड सिस्टम, पब्लिसिटी। तो अभी एक लेते हैं किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट को आदेश मिला है कि प्रेरणा फेस्टिवल में 600 स्टूडेंट्स आएंगे, आपको फीस्ट बनाना। तो अभी कैसे बैलेंस करेंगे दोनों का?
बजट नहीं, बजट 600 पीपल के लिए प्रसादम मिलना चाहिए, बजट शुड बी व्हाटएवर शुड नॉट गो बेस देन दैट।
खाली प्रसादम मिलना चाहिए
नहीं, सबको 600
क्वालिटी, खाली पेड़ भर के
क्वांटिटी एंड क्वालिटी,
क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ये उनको मिलना चाहिए। फीस्ट बोला, तो फीस्ट भी होना चाहिए, बजट के अंदर भी आना चाहिए। तो यहां पे वी हैव टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल टू मेक अ फीस्ट विच शुड कम इनटू द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं कि उनको फीस्ट तो चलो मुर्ग मसाला They will be so happy कि अरे ऐसा कहीं कोई मंदिर में नहीं मिलता, इधर ही मिलता है। That is like the lowest level. And then the budget. That's enough. Time, manpower. कि ठीक है बजट में आ रहा है, फीस्ट भी बना रहे, लेकिन जितने मंदिर के सारे बाकी डिपार्टमेंट के सबको लगा दिया किचन। लेकिन नहीं, खाली किचन डिपार्टमेंट, तो खाली किचन डिपार्टमेंट और कोई घुसेगा नहीं अंदर। किचन डिपार्टमेंट में कितने, 2-3 लोग रहे, 2-3 लोग खाली फीस बनाए, कितने, 600 लोगों के लिए। तो प्रेरणा लेक्चर हो गया, कीर्तन हो गया, सबको कूपन बांट गए, बोला है हमको 3 लोग खाली किचन डिपार्टमेंट के। अभी चावल पक रहा है, रुको, उनको फीस मिलता है रात को 12 बजे। सो अगेन गोइंग टू एक्सट्रीम। तो ये सब एक हमने एग्जांपल लिया कि प्रेरणा के लिए फीस्ट बनाना है, टाइम पे बनाना है, बजट के अंडर बनाना है, फीस्ट भी होना चाहिए, 4 नियम के अंदर होना चाहिए। उसके साथ क्या क्या देखना है, सर्विंग भी बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं फीस बना के वो बड़े बड़े पतीले में छोड़ दिया बस। जो देखना है देखो आप। तो एक को 10 किलो मिला, एक को खाली 12 किलो मिला। तो इंडिपेंडेंटली थॉटफुल एक एग्जांपल उदाहरण। What do we mean by independently thoughtful? That's maturity. That's maturity. Experience doesn't mean that you always, you get the experience. You learn from others' experience. And there is nothing wrong in using Anuman Praman and pratyaksha praman to satisfy shabda praman. Don't think that Gita course mein hum to pura bombard karte. How dare you have pratyaksha praman? How dare you have anuman praman? Abhi aap kitchen mein 600 logon ke liye anuman praman se hi to bana rahe na rice. But that anuman should be based on shabda. and that pratyaksha should be based on shabda. So don't lose track of shabda. That is what is experience in maturity. Well, ऐसा नहीं कि 600 लोग अब ऐसे अनुमान लगा रहे 600 लोग इतना चावल खाएंगे तो ऐसे ऐसे निकाले हम दो अरे 600 बार 600 लोग एक आदमी इतना खाएगा ना दैट इज कॉल्ड फूलिशनेस उनके लिए 600 लोगों के लिए जूस तो 600 कप ऐसा एक दो उसको काउंट करना शुरू कर दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंटली बीइंग फूलिश सो यू शुड नॉट बिकम इंडिपेंडेंटली स्टूपिड यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंटली इंटेलिजेंटली थॉटफुल तो ये हमारी सेवा में हमारे प्रीचिंग में भी प्रीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग में हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए हाउ वी शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल एंड येट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉलेज प्रीचिंग में आपको बोला गया कि अगले राधाष्टमी तक इतने लोग 16 माला पर आने चाहिए अभी ये एक डिक्टेट दिया है डेडलाइन दिया है राधाष्टमी तक 16 माला पे आने उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये नहीं कि उनको कैसे तो राधाष्टमी के दिन पीछे भरी हुई बंदूक रख के जब पूछेंगे ना कोई पूछेगा तो बोलने का 16 माला यहां से उड़ा दूंगा 16 गोली अंदर जो बैंगलोर में पहले इस प्रकार से प्रीचिंग करके भक्त बनाए जाते कि वो आ गया और उसने एक बार टच कर लिया भगवत गीता थोड़ा एक पन्ना खोल लिया बस 16 माला करना है उसको तो एक एक व्यक्ति को उसको दीक्षा के लिए नाम रेकमेंड कर दिया उसको कुछ पता ही नहीं दीक्षा क्या होता है 16 माला क्या होता है तो उसको उसको जब किसी एक बेलगम के भक्त ने पूछा वो बैंगलोर के भक्त कि आप कब से 16 माला कर रहे अरे मैंने शुरू नहीं किया मुझे बोला 16 माला करने के लिए लेकिन माला एक ही दी तो ये जब बोला जा रहा है कि किसी को हमें इस टाइम तक 16 माला पे लाना अर्थात क्या है What do you mean by that? How do you understand this technique? By being independently thoughtful. Which means we have to make them serious devotees, sincere devotees. That is the meaning of 16 rounds. Not that physically they do 16 rounds and they have no understanding of whose rounds they are doing for whom. कि पूरा सब 16 माला करने के बाद पूरा काउंटर नीचे करने के बाद पूछे कौन है कृष्ण कौन है सो दे शुड बिकम सीरियस सिंसियर डिवोटी दैट इज द अंडरलाइंग मैसेज अच्छा आपको बोला गया कि आपको बेस्ट खड़ा करना है 3 महीने में आपके कॉलेज के बगल में बेस्ट खड़ा होना तो क्या समझे आप इसमें संजय प्रो
कॉलेज के लड़कों को तैयार करना रहने के लिए उधर और दूसरा फ्लैट वगैरह देखने का वहां पे उनके प्रसाद का अरेंजमेंट सब करना
बेस का प्रॉब्लम क्या?
भक्ति वेदांत कल्चर ऑफ
बी ए भक्ति वेदांत ए से
भक्ति वेदांत एकेडमी कल्चर ऑफ एजुकेशन
भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन. किसका कल्चर किसका एजुकेशन? जो भक्ति वेदांत स्वामी ने हमको दिया. तो बेस का मतलब है कि दे शुड बिकम एजुकेटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दे शुड बिकम कल्चर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट सिंपली अ प्लेस वेयर दे कैन ईट वेल एंड वेयर दे कैन लिव वेल एंड पास टूर एंड स्लीप वेल. प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में बोले, दैट इफ द ब्रह्मचारीज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी then brahmachari ashram will become simply like a mess. Hare Krishna.
Mess.
International Society for Krishna Prasad Eaters. Or mess members. तो वो समझ में आना चाहिए, वो बेस का उद्देश्य है. तो यदि आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, किचन सेटअप किया, कुक्स को रखा, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ जो बताया आपने, ये सब कुछ किया, और एंड रिजल्ट यदि वो भक्त नहीं बन रहे भगवान के, आपका प्रसाद खाया, आपके बेस में रहे, और फिर आप जाके देखो तो उनके लॉकर में साईं बाबा का फोटो. और आप उनको जाके पूछते हरे कृष्णा ओम साई. ओम साई राम. ठीक है, और कम से कम राम तो बोला ना. तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमारे छोटी से छोटी सेवा में अप्लाई होना चाहिए. टेम्पल और क्लीनिंग, हाउ यू शुड मेंटेन द प्रिंसिपल एंड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल. नाउ आई वोंट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज़ यू हैव टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल ऑफ ईच एंड एवरी सेवा, ऑफ हाउ टू क्लीन द टेम्पल हॉल, ऑल दैट. Like a very classic example of fiasco in regards to being independently thoughtful and the principle is Srila Prabhupada called one very, very big dignitary. In fact, this person in America, he said to Prabhupada that I am very fond of your Krishna Prasad. So Prabhupada invited him, said that, you know, you come and I will personally cook for you. And Prabhupada told to his personal servant that nobody should disturb me, I am cooking. So he got that instruction, nobody should disturb Prabhupada. So this person, he came early. He wanted to also see how Prabhupada is cooking. He came early. Nobody should disturb Prabhupada. Why? Because Prabhupada is cooking. For whom? For you. तो जिसके लिए प्रभुपाद सब कुछ बना रहे थे, वो प्रभुपाद के डिसाइपल ने उन्हीं को भगा दिया. वो तो एलन जिन्सबर्ग, ठीक है जो भी है. this is a classic example of how the very fabric for which something is done is lost. जैसे रविंद्र स्वरूप प्रभु वो बोल रहे थे कि प्रीचिंग में हमको बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग रहता है प्रीचिंग का. हमको लगता है प्रीचिंग मतलब अच्छा सा लेक्चर देना आना चाहिए, प्रीचिंग मतलब आप लेक्चर के बीच में रुकना नहीं चाहिए, प्रीचिंग मतलब श्लोक आना चाहिए. हमको लगता है ये सब प्रीचिंग. तो रविंद्र स्वरूप वो एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे थे अमेरिका में, और रविंद्र स्वरूप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो बोल रहे थे कि वो एक एक आर्ग्यूमेंट रख रहा था, और रविंद्र स्वरूप प्रभु एक एक उसका आर्ग्यूमेंट उसके सामने उसके मुख से बुलवा रहे थे कि कैसे इन्होंने रिफ्यूट किया उसको. ही वाज सेइंग ही एडमिटेड डिफीट एवरी आर्ग्यूमेंट विच ही वाज प्रेजेंटिंग अगेंस्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस. वेरी लॉजिकली शास्त्रिकली प्रैक्टिकली रविंद्र स्वरूप प्रभु वाज रिफ्यूटिंग एंड दैट पर्सन वाज एडमिटिंग दैट यस ही इज लॉस्ट. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फाइनल लॉस्ट. सब कुछ होने के बाद बोला आई एडमिट माई डिफीट बट आई वॉन्ट बिकम हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो ही सेड आई वन द बैटल लॉस्ट द वॉर. अनदर टाइम there was another scholar who was discussing with one debater, and that time Jayanand Prabhu, he was also there in that gathering, and Jayanand Prabhu was doing kirtan in a different room. So this scholar, after all the debate, he said, I think that person who is singing is making more sense than what we are trying to come to conclusion. And then he went and he sat in Jayanand Prabhu's kirtan for 1 hour and he relished. Jayanand Prabhu didn't speak a single word of any scholarly dissertation. कोई बहुत विद्वत्ता आपने दिखाई नहीं की, और कीर्तन की, और वो भी ऐसे कोई बहुत बड़े कीर्तनिया नहीं थे. So he was more convinced sitting in the kirtan of Jayanand Prabhu than discussing with the scholar. तो प्रीचिंग में हमें ये समझना चाहिए कि जितना भी हम किसी का केयर टेकिंग कर रहे हैं, किसी को हम शास्त्र की वाणी सुना रहे हैं, किसी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उन सब में हमको देखना क्या है कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण के निकट जाए. नहीं देखो, कई बार हमको तलवार निकालनी पड़ती.
नहीं, जो भी नया आता है उसको तो कुछ फिलोसॉफी सिंपल.
नहीं देखो, अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिद्धांत के ऊपर. अभी जो भी नया आता है वो हर एक अलग अलग आइटम होता है. ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भी नया आया उसको आप फिर अपने गोद में बिठा के ऐसा ऐसा बेटा क्या खाएगा. तो ये एक एक्सट्रीम हो गया, और दूसरा एक्सट्रीम है कि तलवार पहले से निकल के खड़ा है. आजा. वो कुछ बोलने से पहले उसको पहले मार मुर के अब बोल क्या बोल. दिस अदर एक्सट्रीम. ये दोनों एक्सट्रीम है. तो हमको व्यक्ति को देख के उस हिसाब से गुलाब निकालना है या तलवार निकालना है या कांटे वाला गुलाब निकालना है या मखमली तलवार निकालना है? वो हमको उस व्यक्ति को देख के उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रीचिंग में कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि कोई नया आया तो केवल बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं। व्यक्ति को देख के हमको उसी को तो बोलते हैं इंडिपेंडेंटली थॉट। प्रीचिंग के बारे में बोला गया है और एक दो वाक्यों में वेरी सक्सेंटली रिसेड, प्रीचिंग मीन्स टू सेटल द अनसेटल एंड टू अनसेटल द सेटल। क्या समझ में आया? कृष्ण कॉन्शियस है, जो पहले से त्रस्त होके आया है एकदम, मतलब गेट में एंट्री किया ऐसे गिरते हुए रोते हुए बिलखते हुए कि पक गया हमें संसार से, नहीं जीना मुझे, तो उसको क्या देना आपको? उसको तलवार निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से अधमरा है। तो उसको आप फिर उसको गोद में बिठाओ और उसको फिर आराम से एक एक घास खिलाओ। ये घास नहीं है वो। उसको भी लिटरली मत ले, घास प्रभु जी ने बोला घास खिलाने। नहीं नहीं एक मिनट, मैं जो अभी तक बोला आपको समझ में आया कि कोई व्यक्ति गेट से अंदर आ रहा है, वो व्यक्ति को देखते हुए हमें अपने शस्त्र निकालने, तो तलवार भी निकलना पड़ता है अगर कोई वही भाषा समझ रहा है तो। जैसे प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने किसी ने बोला प्रभुपाद को कि आप ये वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे हैं, आप कौन से में, विच क्लास डू यू बिलोंग टू? प्रभुपाद सेड आई बिलोंग टू द फिफ्थ क्लास। तो प्रभुपाद एकदम नम्र बनकर अपने आप को वर्णाश्रम से बाहर ही निकल, रहे प्रभुपाद तो ऊपर ही हो। और दूसरी जगह पे मिस मेक्सिको प्रभुपाद से मिलने आए, तो वो अपना ऐसा हाव भाव करते हुए, जैसे रेगुलरली वो जो मिस मेक्सिको या मिस यूनिवर्स जो होते हैं, दे ऑलवेज कैरी देयर ओन ऑरा। तो आई उसका जो स्टैंडर्ड वाक्य थे वो सब किसको भी वो बोलती थी, वैसे प्रभुपाद को, स्वामी जी आई लाइक योर प्लेस सो मच, आई विल डेफिनेटली वांट टू कम अगेन। प्रभुपाद सेड व्हाई विल यू कम अगेन? तो प्रभुपाद सेड हैव यू रेड माय बुक? नो, देन व्हाई विल यू कम? You have not read my book. You don't know my philosophy. Why will you come? तो प्रभुपाद ने देख लिया कि इसको थोड़ा हिलाने के लिए, इसको थोड़ा अनसेटल करने के लिए मुझे वो इस्तेमाल करना। Another thing, don't imitate this. कल को कोई इस प्रकार का व्यक्ति आ गया और बोले कि आपका मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर से आना चाहूंगा, क्यों आना चाहेंगे? आपने किताब खरीदा क्या? फिर क्यों आना चाहेंगे? सो डोंट इमिटेट, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, सिद्धांत समझो. जैसे मैं बताता हूं आपको, हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी जो प्रेसिडेंट थे मंदिर के, तो एक बहुत दूर से ऐश्वर्यशाली कोई व्यक्ति आए और वो पहुंचे 1:10 को दोपहर, डीटीज बंद हो गए दर्शन. तो उन्होंने पूछा कि मैं थोड़ा दूर से यहाँ दर्शन ले सकता हूँ? तो उनको बोला गया हमारा जो रूल है 1 बजे दर्शन बंद होता है, हम नहीं खोलते. तो जब महाराज के पास ये बात गई तो महाराज बोले, यू डिड द राइट थिंग. महाराज बोले, यू डिड द राइट थिंग दैट यू टोल्ड हिम दैट दर्शन इज क्लोज्ड, बट देर इज समथिंग विच इज मोर देन बीइंग राइट विच आई वुड हैव डन इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, आई वुड हैव ओपन्ड द कर्टन. महाराज ने बोला, आपने गलत नहीं किया, आपने सही किया, लेकिन सही से भी ज्यादा कुछ आप और भी कर सकते थे. यू डिड समथिंग विच वॉज बेटर, बट देर इज समथिंग कॉल्ड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट. अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी अब आए 1:10 को फ्रॉम ऑल्टर दे दर्शन करना है ना. नहीं देखो, ये जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, डिबेट करके हराने में लगते हैं, ये आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें. कोई अगर प्रश्न लेके आ रहा है कि जैसे मान लो कि मैं नया आदमी हूँ और मैं मंदिर में आया हूँ और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान तो सब जगह है, तो फिर आप मूर्ति क्यों ऊपर स्थापित किए, तो आप क्या बोलोगे? आप डिबेट कर, मेरे को हरा रहे मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं हरा है मेरे को. इसको क्या बोलेंगे आप? देखो, कभी भी हमें कोई भी स्थिति को उसके जो सरफेस लेवल है ना, उस पर देख के कंक्लूजन पे नहीं आ जाना. जैसे प्रभुपाद कई बार ऐसा डिबेट करते थे कि उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति कार ड्राइवर का एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा उसको, वो कन्वर्सेशन आप सुनो, प्रभुपाद उसको लास्ट तक छोड़ नहीं रहे कि तुम क्यों नहीं समझ में पाया रहा कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट. वो बार बार बोल रहा था, इन वन सेंस कार इज मोर इम्पोर्टेंट देन ड्राइवर. तो बोले, नो, ड्राइवर इज मोर इम्पोर्टेंट. तो प्रभुपाद वो डिबेट में, आप बोले क्या, छोड़ो ना, फालतू आदमी से क्या डिस्कस. हाँ, तो अभी आप बोलो कि आपने मेरे साथ डिबेट किया कि नहीं किया, उसको क्या बोलेंगे आप? आपने हराया. तो अभी आप इसको हराना बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? समझा रहे हैं ना, तो हमको व्यक्ति को देखते हुए, मैं वही बात फिर से बोल रहा हूं, व्यक्ति को देखते हुए हमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करने हैं। जैसे कि एक बार मुझे एक ऐसे ही सत्संग प्रोग्राम में कुछ मायावादी आए थे, तो वो लोग ऐसे डिबेट करना शुरू किए भगवान के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को पूछा, हैव यू रियलाइज कृष्णा? मैं बोला यस। हैव यू सीन कृष्णा? मैं बोला यस। नाउ द मूड बिहाइंड सेइंग ऑल दैट, आई हैव रियलाइज कृष्णा 1% और 0.1%, आई हैव सीन कृष्णा वेयर? ऑन द ऑल्टर। I don't have to give that explanation today. Now somebody might be, have you seen Krishna? हाँ। उस व्यक्ति को उस समय वो मुद्दा बताने के लिए, even if somebody says yes, उसका मूड डिफरेंट है। That I am defending Krishna, the mood is कि मैं उसको हराना चाहता हूं। ये बात आपकी सही है कि हमारा मूड ये नहीं होता कि उसको मैं कैसे हराऊं, मतलब इतना उसको डिबेट कर करके हार गया कि नहीं, हाँ मेडल लव वो मूड नहीं, हराया ना पैर पड़ा हाँ ये बात गलत है, ये मूड नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने दुर्योधन को हराया ना, तो फिर अगर युधिष्ठिर बोलते थे क्या ये अर्जुन क्या ये जितना हराना है सब, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन विनिंग ओवर दुर्योधन ओवर कर्ण was for Krishna. So even if you are establishing Krishna consciousness, or if it is seen that you are winning over that person, उसके ऊपर जीत रहे हो, तो आपकी जीत नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच जीता और सारे क्रिकेट बैट नेचना चले गए, हमने जीता, ट्रॉफी इधर लेके आने, जीता कौन है? इंडियन टीम जीता है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जीतता भी है तो वो जीता कौन है? कृष्ण जीते। खैर फिर से मैं बोल रहा हूं कि वो मूड जो आप समझ रहे हैं वैसा मूड नहीं होना चाहिए, हमें अंततः उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के निकट आना। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का फॉर्मूला प्रचार करने का, घुटनों पे गिर के, दांतों में तृण डाल के, हाथ जोड़ के, कि आप जैसा महान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसे शुरुआत करके, और फिर आगे चल के उसको समझाना, आप जैसा महान मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इफ इन केस वो पर्सन पूर्ण रूप से माया में है। मूड समझ में आ रहा है उसमें आपको? अरे व्यक्ति को देखते हुए, जैसे आपने दुकान खोली है ना, पूरा जनरल स्टोर है, सब कुछ है, एक रिफिल से लेके पानी की टंकी सब कुछ है उसमें। तो अगर कोई आ रहा है तो उसको सबसे पहले टंकी चाहिए ना पानी की, वो खाली रिफिल लेने आ रहा है, उसको खाली रिफिल दो प्रीचर शुड बी एक्सपर्ट एंड मैच्योर्ड लाइक अ डॉक्टर कि कितना डोज देना है. बस एक गोली दिन में तीन बार उतना डोज उस पेशेंट की दिखाई. ऐसा नहीं दूसरा पेशेंट अरे तुमको एक गोली तीन बार मेरे को तीन गोली तीन बार. ये डॉक्टर कुछ कंसिस्टेंट नहीं. उसको तीन गोली तीन बार उसके बीमारी के अनुसार दिया है और किसी को कोई गोली लेने की जरूरत नहीं. जाओ वो स्टोरी है ना वो रूपद बोल रहे घोड़ा का गला फूल गया वो जानवर का डॉक्टर तो हथौड़ा मंगाया अपने असिस्टेंट को बोला हथौड़ा लेके तो मारा इधर जैसे मारा सूजन चली गई. तो असिस्टेंट ने सोचा ये तो बहुत आसान तरीका है जानवर का डॉक्टर बनना. उसने क्लिनिक खोला अंदर क्या रखा अलग अलग हथौड़े रखे. जो भी जानवर आता क्या हो गया इधर सूजन ला उसका पेट दर्द कर रहा है पेट को इधर पेट को. ये पता है स्टोरी पता है. तो फिर सबने जाके शिकायत की जो उसका जो डॉक्टर था उसको बोला कि भाई तुम्हारा ये जो शागिर्द है ये देखो क्या कर रहा है हथौड़े से मार रहा है सबको. तो उसने बोला क्या क्या क्या, क्या कर रहा है तुम्हें. बोला वैसे उस जो घोड़ा है तो ना उसको सूजन थी उसको आपने हथौड़े से मारा ठीक हो गया. तो वो घोड़े के अंदर वो कलिंगड़ फंस गया था घोड़े के गले में कलिंगड़ फंस गया था. तो कलिंगड़ को तोड़ने के लिए हथौड़ा से मारा. तो वैसे ही है कई लोग आते हैं पूरा कलिंगड़ लेके तो उनके लिए हथौड़ा निकालना पड़ता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एक्चुअली हाउ टू बिकम मैच्योर्ड प्रीचर. Like I'll tell you, कलंत्री प्रभु के घर पे एक ये कौन था वो शिवसेना का प्रेसिडेंट पता नहीं डिस्ट्रिक्ट का कि सिटी का यहाँ का नीलेश चौहान का बड़ा आदमी था. अभी उसने काफी अध्यात्म में रिसर्च करके रखा था अलग अलग पंथ के बारे में जानकारी रखी थी. तो अब पूरा मीटिंग सेट क्यों किया था ताकि मैं उसको प्रीचिंग करूं. वो लंच प्रोग्राम पूरा सेट किया था ताकि मैं उसको भी मालूम था. तो उन्होंने प्रश्न पूछा नहीं मैंने उनको प्रश्न पूछा कि मैंने सुना आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं आपने कुछ चेष्टा की कुछ अध्यात्म अपने जीवन में पालन करने. तो उन्होंने कहा कि मैं ओशो का किताब बहुत पढ़ा. तो तुरंत ओशो का नाम सुनते ही क्या होता है तो साधारणतः क्या करते थे कहा हथौड़ा के तलवार के. ओशो का तो अभी खात्मा करता हूँ. तो उसने बोला मैं ओशो की किताब बहुत पढ़ा तो मैं बोला हाँ मैंने भी बहुत पढ़ी. तो तुरंत उसको अच्छा आपने भी पढ़ी तो आपका क्या निर्णय आपका क्या विचार है. देखो ये बहुत सेंसिटिव प्रश्न था क्योंकि वो व्यक्ति काफी घुसा हुआ है वो शो में और उसने अब मेरे विचार पूछे. तो हमारे विचार क्या होते हैं महानुभाव के विषय में. परंतु परंतु मुझे अब इस प्रकार से ओशो को प्रेजेंट करना था कि मैं कॉम्प्रोमाइज भी ना करूं और उसका हृदय भी ना दुखाऊं। आप क्या बोलते थे इस स्थिति? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत भौतिक दृष्टिकोण से बड़ा व्यक्ति और सुसंस्कृत भी। अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगता है वो शो, मेरे को बहुत अच्छा था। चलो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ आपसे, आपने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि जो अच्छा लगे उसको पालन कर। नो, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजिंग। आई टेल यू माय टू पैसा worth of reciprocation which I did with this person. I said, I really appreciated Osho when I was reading his books. He's a genius. Osho was a genius in regards to his understanding of the practical aspect of human psychology, which is true. Very genius person, very intelligent, and I've read his many books. So for 10 minutes I glorified all the aspects of Osho which he deserves to be glorified for. Yes, he deserves to be glorified for being a genius, for being a practical presenter of human psychology and all that. That's all not based on Shastra. Any Tom, Dick and Harry from the street can become like that. तो 10 मिनट तक उसको ग्लोरीफाई किया और फिर 10 मिनट तक ग्लोरीफाई करने के बाद ऑब्वियस उसके मन में ये प्रश्न आएगा ना कि ऐसा ग्लोरिफिकेशन, एज इफ आई वाज ग्लोरीफाइंग विद फाइव माउथ, बट हाउ कम देन यू जॉइन हरे कृष्ण, व्हाई नॉट ओशो? So by doing that, I kind of implanted a seed of doubt in his mind. That if this person is glorifying Osho so much, how come he took up to this path? So then after 10 minutes I asked, so now your question might be, then how come I became attracted to Krishna consciousness? Tone raha, yes, I was about to ask that. तो अगर वो नहीं भी पूछेगा तो वो क्वेश्चन पैदा करो उसके अंदर, अगर वो नहीं भी हो, क्योंकि अभी हमको उसको बताना है कि मैं क्यों हरे कृष्णा में, पर उसके मन में वो प्रश्न उठ गया है इतना ग्लोरीफाई करने के बाद। एक मिनट, मैं खत्म नहीं किया। उसके बाद में मैंने बोला कि व्हेन आई रेड भगवद गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद, I found something higher than Osho. So I didn't deny that Osho was not higher. Osho was higher. But in Srila Prabhupada's Gita, I found something higher than Osho. What is that? Next question, what is that? So now you have the ground ready to present the Bhagavad Gita. और उसमें भी आपको अगर उसकी जानकारी है तभी बोलो। सो बिकॉज आई न्यू ओशो व्हाट ओशो इन एसेंस व्हाट ही वाज वांटिंग टू से, तो ओशो का मैंने बोला कि ओशो, मैंने उनको पूछा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द एसेंस ऑफ ओशो फिलोसफी, सो ही सेड, ओशो सेड दैट वी शुड not repress our feelings. हमारे इमोशन. और वो सही बात है, इमोशन सही बात. नाउ कृष्णा डज ही से दैट कि अपने इंद्रियों पे दमन ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल. कृष्ण बोलते हैं गीता में, हाँ या ना? यस, कृष्णा सेज, कृष्णा ऑल्सो सेज आर्टिफिशियली ट्राइंग टू रिप्रेस विल नॉट वर्क. दिस इज वॉट कृष्णा ऑल्सो सेज. But then when I read the Gita, I found out Krishna says something higher than just repression. Krishna says you can overcome that by substitution. Vishaya vinivartante niraharsya dehina. So I found that that param drishtva, higher taste, when you get, then all these things can be easily. This is Bhagavad Gita as it is. So this is something which I found which was higher, which I didn't find in Osho's book. So, yahan pe, you are dealing with a person who has some sentiments for that Osho. So, you cannot say that this person is wrong. So, by saying that A is wrong, doesn't mean B is right. But by saying B is higher than A, means you don't have to follow it. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि how to deal with these kind of sensitive issues where you have to not compromise कि चलो जो तुमको अच्छा लगता है. मेरे को कृष्ण अच्छे लगते ना, तुमको ओशो ना, नहीं?
हाँ, अभी तो मेरा प्रश्न का उत्तर मिल रहा है. अभी एक मेरा नाम प्रश्न आया था, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है मगर उसको अगर ये हम बताएंगे तो वो भी उसको भी लगेगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है मुझे बता रहा है इसका मतलब इसका हिस्सा सही है, यानी कि रिपीट करना चाहता है वो बताना चाहता है कि वो मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ और वो जो बता रहा है उसको बता.
हाँ, तो आप कैसे बताओ उसको,
तो
ये आप पे निर्भर है कि आपको आप उसको इनडायरेक्टली अगर ये बोल दो ये जो ओशो है ना पूरा बेकार गलत आप जा रहे नर्क में उसके साथ पीछे पीछे.
तो ऐसा भी यानी कि कोई अलग जॉब करता है तो हम कहते हैं ठीक है आप वो भी करो मगर आप आते जाओ ये भी हरे कृष्ण का भी दो माला जप करो वो भी करो.
हाँ, मैं इसका उदाहरण देवलाली में दो हफ्ते पहले एक फैमिली आए और वो फैमिली पूरा दुर्गा का वर्शिपर था. तो मेरे को आके क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे जो कुछ मेरे आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए मिल रहा है, जो नरिशमेंट मुझे चाहिए, वो मुझे दुर्गा देवी से मिल रहा है, मैं क्यों हरे कृष्ण का जप करूं? जो मुझे मिल रहा है, दुर्गा देवी इज गिविंग मी एवरीथिंग व्हाट आई नीड. आप जो पूछ रहे हैं वो मैं दुर्गा का मंत्र जप करता हूँ, पत्नी भी बोली मैं करती हूँ, दोनों बोले, तो हमको क्या जरूरत है ये हरे कृष्णा अपनाने का? क्योंकि बाकी लोग उनको बोलते थे हरे कृष्णा क्यों नहीं करते, हरे कृष्णा युग धर्म नाप तो पर तो रोपा है. तो उसने बोला कि अल्टीमेटली आपको क्या आध्यात्मिक सुकून शांति ये सब चाहिए ना, मेरे को मिल रहा है, क्या बोलेंगे?
जैसे अभी आपने कहा कि इससे भी ऊंचा मेरे ऊंचे वर्ष का जो अगर आप ऊंचा देते हैं आप ये कर सकते
हैं. नहीं
नहीं
चाहिए,
नहीं
जाने का ऊंचा मेरे को मिल रहा है, सबसे ऊंचा मेरे को मिल रहा है.
नहीं वो तो समझ रहे हैं सबसे ऊंचा मिल रहा है मगर नहीं मिल रहा है.
वो आप बोल रहे हैं
नहीं नहीं उसको यहाँ पर भी ले सकते हैं ना कि अगर कोई शुअर है
आपने मेरे को सूर बोला सूर
एग्जांपल दे रहा हूँ
दुर्गा देवी की वर्षी विष्टा, मैं सुअर। वाह, खाली आप ही, खाली हरे कृष्णा वाले सब इंसान है, बाकी सुअर। ओके, मैं आपको बताता हूँ इस केस को मैंने कैसे डील किया, उसके बाद में हम आगे का प्रश्न उसके बाद में लेते। तो मैंने कहा कि आप कौन सा मंत्र करते हैं दुर्गा देवी? तो उन्होंने कुछ मंत्र बोल दिया। मैंने, आपको पता है वो मंत्र कहाँ से? नहीं, वो तो पता नहीं। मैंने बोला कि आपको अगर दुर्गा देवी के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मैं आपको शास्त्र बताता हूँ, इसमें आप और अच्छी से उनकी वर्शिप कर सकते हो, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में कुछ आपने सुना, वैष्णव देवी, मुंबा देवी, या अलग अलग देवी जो दुर्गा देवी के, ये सब का मेंशन श्रीमद् भागवत में कौन करते है? भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी के विषय। और दुर्गा देवी स्वयं, वो भगवत गीता में उनका मेंशन है। भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते स चराचर, कि मेरी अध्यक्षता में दुर्गा देवी कार्य कर रही है। और दुर्गा देवी के कार्य क्या हैं, ये सब मैं आपको जानकारी दुर्गा देवी के बारे में देना चाहता हूँ। कृष्ण छोड़ो, दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी के विषय में आप जानिए, भागवतम में दुर्गा देवी के विषय में आप जानिए, इसमें भगवत गीता में। और अल्टीमेटली भगवत गीता है क्या? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति। तो दुर्गा देवी के विषय में जानिए और दुर्गा देवी से जानिए कि उनका मत क्या है। तो उनका मत भी भागवतम में बताया गया कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेविका है। बस हमको इससे ज्यादा बोलने का नहीं कि आप क्या करो। गोपियों ने दुर्गा देवी की आराधना की, कात्यायनी देवी की, तो आप गोपियों के स्तर पर है दुर्गा देवी की आराधना कर। तो यदि आपको उसकी जानकारी नहीं तो आप दशम स्कंद में पढ़िए, गोपियों ने कैसे कात्यायनी की पूजा की, तो आपका जो वो वर्शिप आप कर रहे हैं वो और ऑथेंटिक होगा। और वो जब दशम स्कंद पढ़ेंगे, गोपियों ने क्या पूजा की कात्यायनी देवी की, क्या पूजा की, कि हमें कृष्ण दो पति के। सो लाइक दैट वी आर एनकरेजिंग देम। प्रभुपाद क्या बोले, आई हैव नॉट कम हियर टू मेक यू इनटू हरे कृष्ण, आई हैव कम हियर टू मेक यू बेटर क्रिश्चियन, आई हैव कम हियर टू मेक यू द बेस्ट क्रिश्चियन। Who is the best Christian? One who worships Krishna. That you don't have to say. तो कोई आ गया, मैं शिव जी का आराधना करता हूँ, मतलब ये ऑथेंटिक होने चाहिए, ऐसा कोई नहीं, मैं साई बाबा का आराधना करता हूँ, so I will make you the best साई बाबा worship. नहीं, उसमें फिर आपको मैच्योरली डील करना है। एक्चुअली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हमको विशेष रूप से हमारा जो मेन लाइन एक्टिविटी क्या है, प्रीचिंग, तो प्रीचिंग में हम ये थोड़े सेशंस और लेंगे, बैलेंसिंग बिटवीन रोज एंड सोर्ड। नहीं नहीं, हम डिस्कस करेंगे ना, और आप लोग सोच के आइए, हम इसमें एक चीज ऐड करेंगे, हम नेक्स्ट हमारे सेशन में हम एक मॉक डिबेट रखेंगे। मॉक डिबेट मतलब कि हम एक को या मैं खुद अलग अलग रोल प्ले करूंगा, मायावादी, साइंटिस्ट, जड़वादी, अलग अलग कि मटेरियलिस्टिक आदमी कैसा, मायावादी कैसे, साइंटिस्ट कैसे, तो आप कैसे उसको डील करते हो, थोड़ा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हमारे कुछ तो आप लोग सब ये भक्ति शास्त्री का तैयारी भी हो रहा है, प्रैक्टिकल भक्ति शास्त्री, हाउ यू विल बिकम नॉट थियोरिटिकल बट प्रैक्टिकल शास्त्री ऑफ भक्ति विथ वेदांत। अच्छा है डिस्कशन, सो लाइक दैट वी विल कम टू नो हाउ टू बिकम निमित्त मात्र। एंड विद दैट कृष्णा विल होल्ड द लगाम बाय विच वी कैन कंट्रोल अवर। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।